ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौड़ भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो शायद भगवद गीता का कुछ श्लोक लिखा है लेकिन मुझे बताया नहीं गया था, मुझे यहाँ आके पता चला कि कुछ टॉपिक है, तो मैं सोचा कि आज जगन्नाथ का रथ यात्रा है, जगन्नाथपुरी में रिटर्न रथ यात्रा, तो मैं आज सुबह दिल्ली टेम्पल भागवतम क्लास लेने के लिए गया था सुबह, तो मैंने वहाँ भी जगन्नाथ की ही चर्चा की। तो फिर यहाँ आते समय मैं सोच रहा था कि यहाँ भी भगवान जगन्नाथ के बारे में ही थोड़ी देर के लिए बोलूँ। तो भगवान कृष्ण भगवत गीता में वर्णन करते हैं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं रक्षति। तो उस श्लोक के शुरुआत में कहते हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वर। फिर कहते हैं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं रक्षति। तो भगवान को बहुत चिंता है। किसकी चिंता है, किसकी है चिंता? अपनी नहीं, हाँ सारे इस जगत में जो जीव है उनकी कृष्ण को सर्वाधिक चिंता है। इस संसार में हर एक जो जीव जन्म लेता है वो तो सर्वाधिक किसकी चिंता करता होगा, तो अपनी चिंता सर्वाधिक करता है। उसके ऊपर उसके शरीर से जो जुड़े हुए संबंधी हैं अहम और ममा, मतलब अहम तो हो गया कि मैं, और ममा मीन्स ममा में तो बहुत सारी चीजें आती हैं। ममा से शुरू होता है मम्मा मम्मी, नहीं सबसे पहले ममा कहना सिखाते हमें अपनी माता को, माँ कहते हैं हम या मम्मा कहते हैं आजकल लोग। तो ये जो जगत में हर जो जीव है अपने बारे में बहुत अधिक चिंतित है, और उसको चिंता किस बात की है कि मैं सबसे अधिक इस जगत का उपभोग कैसे करूं, उपभोग नहीं भोग कैसे करूं। एक होता है भोक्ता, दूसरा होता है उपभोक्ता। उपभोक्ता तो बाद में आता है, पहले कौन आता है? भोक्ता। तब हम सारे जीव इस संसार में भोग करना चाहते हैं, और उसकी जो क्वांटिटी है उसकी कोई सीमा नहीं है, हम किसी सीमा में बंधना नहीं चाहते। इसलिए बच्चा जन्म लेता है कि नहीं, स्कूल या कॉलेज जाता है कि नहीं, वो स्वतंत्रता चाहता है। कोई बंधन नहीं होना चाहिए मेरे ऊपर, ना माता का ना पिता का और किसी का, मैं जो चाहूं करो वो सोचता रहता है। जैसे महाराष्ट्र में एक लड़के थे, अभी अभी कॉलेज जाना शुरू किया था, उसके घर वालों ने कहा कुछ डांटा उन्होंने घर वालों ने, तो इसको इतना गुस्सा आया उसने सीधा फैन को रस्सी लगाया, समझ गए ना, फैन को रस्सी लगाना सीधा आत्महत्या, आत्मदहन एक प्रकार से आत्महत्या कर ली उस बेचारे युवती ने। और एक चिट्ठी लिख के रखी, एक छोटा सा नोट, और उसमें क्या लिखा था कि मैं आत्महत्या कर रहे हो उसका एक में कारण यह है कि मेरे माता पिता मुझे फेसबुक और व्हाट्सएप यूज करने नहीं देते। अब सोचो, मतलब हम सब प्रकार से स्वतंत्र होना चाहते हैं और हमें किसी का बंधन अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए भगवान से भी अलग होकर भगवान का भी बंधन हमें अच्छा नहीं लगा, इसलिए क्या किया, हमें भगवान को भी रिजेक्ट कर दिया, छोड़ दिया उनको वैकुंठ में, और फिर अलग होकर आनंद उपभोग करना चाहते हैं। तो चैतन्य चरितामृत प्रेमी वर्ग ग्रंथ में वर्णन आता है, वहां जगदानंद पंडित कहते हैं कि जैसे ही जीव भगवान की ओर उन्मुख नहीं होता, बहिर्मुख होता है, तो अतएव माया तार झापटिया धरे, कृष्ण बहिर्मुख जीवा भोग वांछा करे। एक होता है, दो प्रकार के मुख है, जैसे हम भी अपने जीवन में जब दुखी होते हैं तो झूठा सा स्माइल करते हैं ना, या फिर बहुत सुखी है तो कई बार दुखी होने का बहाना नाटक करते हैं, तो कई प्रकार के फेस हम अपने जीवन में दर्शाते रहते हैं, लोगों को दिखाते रहते हैं। तो उसी प्रकार से एक प्रकार का चेहरा है जिसको कहते हैं उन्मुख। उन्मुख मतलब उस ऑब्जेक्ट या भगवान सामने है उनकी ओर देखना या उनकी आज्ञाओं का पालन करके उनकी सेवा में लगे रहना, ये उन्मुख है। और दूसरा है बहिर्मुख, वहां भी मुख है और पहले में भी मुख था, ये मुख कौन सा है बहिर्मुख, बहिर्मुख उल्टा कर दिया फेस, भगवान से अलग दूसरी दिशा में हम देख रहे हैं। तो जो जो जीव अपने जीवन में भोग करना चाहता है उन सबने भगवान की ओर नहीं देखा, किसकी ओर देखा, माया की ओर, किसकी ओर, हाँ, जिन्होंने भगवान की ओर नहीं देखा, जिन जीवों ने माया की ओर थोड़ा सा दृष्टिपात किया, अरे माया बहुत सुंदर है। अभी माया मीन्स क्या बताइए, माया मीन्स क्या, कोई, माया मीन्स जो भी वस्तु हमें कृष्ण का विस्मरण कराती है वो हमारे लिए क्या है, माया है। तो कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसके संग में आकर भगवान का स्मरण कम हो रहा है, वो वस्तु हमारे लिए माया का साक्षात विश्व रूप है। कौन सा रूप है, विश्व रूप, बड़ा रूप होता है ना विश्व रूप। तो कोई भी चीज हो सकती है, हमारे पारिवारिक जन हो सकते हैं, घर का टेलीविजन हो सकता है, हमारे वस्त्र हो सकते हैं, कुछ भी चीज, या घर का आईना हो सकता है। सबसे अधिक आप किसमें देखते हैं, किसमें देखते हैं, कृष्ण को कितनी बार देखते हैं और आईने में कितनी बार देखते हैं, यदि देखा जाए। अब सोचो, मतलब हमारे लाइफ में सुबह उठते ही सबसे पहले क्या चाहिए, आईना चाहिए, उसके बिना कंटिन्यू नहीं कर सकता जीवन। आप ट्राई करके देखिए कि एक दिन मैं आईने में, व्रत लीजिए, एक हफ्ता मैं आईने में नहीं देखूंगी या नहीं देखूंगा, तो सोचिए, क्योंकि आईना हमें दर्द दिखाता है कि अरे तुम भगवान से कम नहीं हो, तुम घर के भगवान हो, स्वामी हो, भोक्ता हो, एंजॉयर हो, तुम इतने सौंदर्यमान हो। तो इस प्रकार से ये जो आईना है वो वास्तव में हमारे देहात्म बुद्धि को बढ़ाता है, देह में आत्म बुद्धि करना ही क्या है, देहात्म बुद्धि है, मीन्स देह को ही आत्मा समझना, वो देहात्म बुद्धि है। इस प्रकार से हम देह नहीं है, हम कौन है, आत्मा है। तो अभी इतनी वैरायटीज शीशे की आई है, आईने की, ब्रश करने के लिए कोई आईने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कि आईने में नहीं देखेंगे तो आप दांत आपको नहीं दिखाई देंगे कि कहाँ ब्रश जा रहा है, ऐसा कुछ है नहीं है। कितने चीजों को आप डेली एक्टिविटीज में देखिए, नीड नहीं है। मतलब इस संसार में ऐसी हजारों हजारों चीजें हैं जो दिन भर हम उनके संपर्क में आते हैं, वो हमें कृष्ण का स्मरण कराने में सहायता नहीं करते, बल्कि कृष्ण का विस्मरण कराने में सहायता करते हैं। तो इस कारण से कोई भी चीज जो कृष्ण का विस्मरण कराती है वो हमारे लिए माया है। तो इस प्रकार से हमें सोचना चाहिए, लिस्ट बनानी चाहिए कि क्या क्या चीज है जो मुझे भगवान का स्मरण कराती है। क्या है सबसे पावरफुल चीज, क्या है जो भगवान का स्मरण हमारे जीवन में बहुत उत्कृष्ट रूप में या शक्ति या सामर्थ्य के रूप में करती है या करवाती है, न चाहते हुए भी? कौन बता सकता है? सबसे आखिर में प्रभु, प्रकृति, मृत्यु, हाँ, कष्ट, और कोई, सबसे सही उत्तर क्या है? कृष्णा के भक्त, भगवान के भक्त ही हमें भगवान का स्मरण करवाते हैं। इससे पहले भी हमने मृत्यु को देखा है, इससे पहले भी प्रकृति का आनंद लिया है, इससे पहले भी कई सारी चीजों के संपर्क में आए हैं, लेकिन कृष्ण का स्मरण नहीं हुआ। लेकिन एक वस्तु, एक चीज के संपर्क में आए तो हमारे जीवन में किसका स्मरण बढ़ने लगा? कृष्ण का स्मरण। और वो क्या है? भगवान के भक्तों का संग। इसलिए व्यक्ति के जीवन में किसी चीज की कामना करनी चाहिए तो वो यही कामना करनी चाहिए कि हे कृष्ण, हम मुझे क्या करो, जन्मे जन्मे है यही अभिलाष कि आपके भक्तों का संग मुझे मिले। तांदेरा चरण सेवी भक्त सनेवास, जन्मे जन्मे है यही अभिलाष। तो हमारी कितनी सारी अभिलाषा होती है, जब हम तुलसी आरती गाते तो भी गाते ना, मोर यही अभिलाष विलास कुंज दिवोवास। कई भक्त लोग कहते हैं मोर यही अभिलाष अमेरिका दिवोवास, बीच में चुपके से बोलते हैं कुछ भक्त लोग कि प्रार्थना, क्योंकि तुलसी महारानी क्या है, जे तुम्हारा शरण लाए तार वांछा पूर्ण है, जो भी आपकी शरण लेता है उसकी इच्छा पूर्ति होती है, वो साक्षात वांछा कल्प तरु है, वो कोई सर्वसाधारण वृक्ष नहीं है, इच्छाओं की पूर्ति करने वाला है तुलसी वृक्ष। तो भक्त लोग या कई सारे लोग अपनी इच्छाओं को प्रकट करते हैं और जिसके द्वारा पूर्ति की कामना करते हैं, लेकिन वास्तव में हमारे जीवन में कई सारी अभिलाषाएं, कई सारी इच्छाएं होती हैं जिनको पूर्ण करने के लिए हम सदैव लगे रहते हैं। शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति दिन में 30,000 से ज्यादा इच्छाएं व्यक्त करता है। कितनी हजार? 30,000, याद भी नहीं रहती। सपने में इतनी सारी इच्छाएं आती हैं, जगते कि नहीं, आंखें खोलते कि नहीं, भौतिक भोग करने की इतनी सारी इच्छाओं का जो मिलन है वो हो जाता है। तो इतनी सारी अभिलाषाएं हैं, इच्छाएं हैं, और उनको एक शब्द में रखा जाए तो वो यही है, भोग करना चाहता हूं। मैं क्या चाहता हूं? भुक्ति। उसको कहते क्या? भुक्ति। तो इस प्रकार से हमारी कई सारी अभिलाषाएं हो सकती हैं, लेकिन आचार्यगण और शास्त्र कहते हैं कि इस भौतिक भोग की जो अभिलाषा है वो अंततः दुखदायी है। इसलिए भगवद गीता के 5वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं यही संस्पर्श जा भोगा दुख ये नव एवते अत्यंतवंत कौन्तेय नतेषु रमते बुधा। रमते मीन्स उसमें आनंद नहीं लेता। कौन से सुखों में आनंद नहीं लेता? जो जिन सुखों का आदि है और क्या है, अंत है, भौतिक सुख है। भौतिक सुख का ये लक्षण है जिसकी शुरुआत है और एक दिन में क्या है, अंत है। अभी हम सौंदर्य की बात करते हैं तो सौंदर्य एक समय में बहुत सौंदर्य होता है, धीरे धीरे व्यक्ति बूढ़ा होने लगता है, सौंदर्य हाथ से क्या होता है, छूटने लगता है। तो इस भौतिक संसार के जो भौतिक सुख है, भोग है, उनका आदि है, मतलब एक शुरुआत है और कालांतर में उसका विनाश है, खत्म होने वाले है। इसी कारण से कृष्ण कहते हैं यही संस्पर्शजा भोगा, क्योंकि ये सारे भोग स्पर्श सुख पर आधारित है। पांच इंद्रियों के द्वारा, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जो हम सुख अनुभव करते हैं, ये वास्तव में एक प्रकार के स्पर्श सुख है, जिनकी शुरुआत है और जिनका अंत है। इसलिए कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, नतेषु रमते बुधा, बुद्धिमान व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। तो बुद्धिमान व्यक्ति करता क्या है, बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, मेरी सेवा में लगा रहता है, मुझे जानना चाहता है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान के बारे में जिज्ञासा करता है, भगवान को जानना चाहता है और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना से जन्मों जन्मों उनकी सेवा में नियुक्त होना चाहता है। इसी कारण से नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि मेरी यही अभिलाषा है, तांदेरा चरण सेवी भक्त सनेवास, मैं तो भगवान कृष्ण के जो महान भक्त हुए हैं उनके चरणों की सेवा करना चाहता हूं। अब कोई कहे कि भक्तों के चरणों की सेवा का मतलब क्या है, भक्तों के चरणों की सेवा मतलब ये नहीं है केवल कि वो आ गए और उनके चरण पकड़कर बैठ गए या चरण धो लिए। उनके चरणों की सेवा मतलब उन्होंने जिस प्रकार से भगवान कृष्ण की सेवा की है, उनका अनुगमन करते हुए अनुकूल भाव से कृष्ण की सेवा करना और कृष्ण की सेवा उनके वचनों का पालन करते हुए करना, ये वास्तव में उन महान भक्तों की सेवा है। तो वो कहते हैं कि तांदेरा चरण सेवी, तांदेर मीन्स ऐसे ग्रेट सोल्स, महात्मा। महात्मा कौन है, महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृति माश्रिता, जिस व्यक्ति ने भगवान कृष्ण की जो अंतरंगा शक्ति है उनकी शरण ग्रहण की है वो महात्मा है। और महात्मा करता क्या है, भजन्ति अनन्य मनसो, अनन्य भावना से भगवान का भजन या उनकी सेवा करता है। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं तांदेरा चरण सेवी भक्त सनेवास, कृष्णा आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो। अभी हम तो कितनी चीजें चाहते हैं, ये चाहत कभी खत्म नहीं होती, हाँ? तो हम कितनी चीजें अपने जीवन में चाहते हैं, लेकिन भगवान के ऐसे भक्त हमें ये सिखाते हैं कि भगवान से किस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए, हाँ? किस प्रकार से भगवान से कुछ मांगना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो ऐसी वस्तु की डिमांड करता है जो उसके पास क्या रहे, शाश्वत रहे। जैसे एक राजा था, तो राजा का जब बर्थडे था तो राजा ने सारे जो कैदी थे उन सबको कहा कि आपको जो भी चाहिए आज आप मनसोक्त रूप से मांग सकते हो, कुछ भी वस्तु। अभी कैदियों ने बोला अरे वहां टेलीविजन की व्यवस्था नहीं है, टेलीविजन होने चाहिए सारे चैनल्स के साथ। किसी ने कहा मुझे रोज बीड़ी और सिगरेट पीने का आदत है तो मेरे लिए वो प्रोवाइड करो। ऐसे अलग अलग लोग अलग अलग डिमांड्स कर रहे थे और राजा का जब जन्मदिन था तो वो उदार हो गया था, सब कुछ देने के लिए तैयार था। तो एक उनमें से एक बहुत बुद्धिमान था, उसने क्या कहा, मुझे इस जेल से क्या करो, रिहा कर दो, बाहर भेज दो, वो मुक्त हो गया। तो उसी प्रकार से हमें सोचना चाहिए, हमारे पास वो योग्यता नहीं है, भगवान से क्या प्रार्थना करनी चाहिए जिसका शाश्वत मुझे लाभ मिल सकता है। रिसेंटली मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था कि एक राजा ने अपने सारे सिटीजन जो नागरिक हैं उन सबको कहा कि मैं मेरे दरबार में बैठूंगा सिंहासन के ऊपर और उस हॉल का गेट बंद होगा और एक जब शंख की ध्वनि होगी तो आपको क्या करना है, सारे लोग जितने भी अंदर आए और उस हॉल में बहुत सारी वस्तुएं रखी गई थी, बहुत मूल्यवान हीरे मोती बहुत सारी चीजें। राजा ने कहा हाँ व्यक्ति को आना है और जो जिस चीज का स्पर्श करेगा वो चीज किसकी हो जाएगी, उस व्यक्ति की हो जाएगी। सब लोग तैयार हो गए। आप सोचो आपको संडे क्लास में यहाँ बुलाया जाए और कहा जाए कि यहाँ बहुत अलग अलग वस्तुएं रखी जाने वाली है, आपको आकर क्या करना है, छूना है और जाते समय वो वस्तु अपने घर ले जानी है। तो आप क्या करोगे, तैयारी के साथ आओगे, उस दिन बहुत ज्यादा उत्साह होगा। तो उसी प्रकार से सारे नागरिक तैयार हो गए और जैसे वो दरवाजे पट खुल गए दौड़ पड़े। राजा सिंहासन पर बैठ के देख रहा है, सबके चेहरों को देख रहा है कौन क्या पकड़ना चाहता है। तो वहां रखे हुए कई सारे साज सामान आदि को लोग आकर पकड़ रहे थे, स्पर्श कर रहे थे, लेकिन छोटी सी बच्ची थी, बहुत ही छोटी सी, वो कहां रुकी नहीं, वो किसी वस्तु के पास नहीं गई, वो छोटी सी बच्ची सीधा चलते चलते गई सीधा राजा के पास। राजा ने सोचा अरे ये छोटी सी बच्ची क्यों मेरे पास आ रही है, सब लोग तो अलग अलग वस्तुएं पकड़ने में मग्न है। हाँ तो आई और उसने किसको स्पर्श कर दिया, राजा को, और फिर राजा किसके हो गए, वो छोटी सी बच्ची के हो गए और राजा की जो भी चीजें हैं फिर वो किसकी हो गई, वो छोटी की। तो उसी प्रकार से राजा कृष्णा है और हम सारे वो बुद्धू नागरिक हैं जो हम क्या कर रहे हैं। हाँ इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है जिसको छोड़कर, भगवान को छोड़कर हम इस संसारिक वस्तुओं को पकड़ने में मग्न हो गए हैं। हमें बुद्धिमान बनना है तो वो छोटी सी बालिका के समान जिस जो कहा भी नहीं रुकी, तो जब भगवान की भक्ति में लगते भी हैं तो बहुत सारे आकर्षण आते हैं, बहुत सारी वस्तुएं लगता है कि अरे ये भी होना चाहिए, भौतिक वो भी होना चाहिए, फिर आप किसको भूल जाते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, जोर से
हरे राम,
और जोर से
राम, हरे हरे।
तो हम भूल जाते हैं भगवान का स्पर्श किससे करते हैं, हम इस हरे कृष्ण मंत्र से। बाकी सारी चीजों में हम उलझे रहते हैं लेकिन हमसे एक चीज नहीं होती और वो कौन सी है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वास्तव में हम उन नागरिकों के समान मूर्ख बने रहते हैं। तो इस प्रकार से हम सीखते हैं भगवान के महान भक्तों के द्वारा कि इच्छा कौन सी रखनी भी है या भगवान से क्या मांगना है, तो इन आचार्यों से या भक्तों से सीखना चाहिए। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा कि कृष्ण आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो इस संसार में। वास्तव में जो व्यक्ति भगवान की भक्ति के अलावा, भगवान की सेवा के अलावा भगवान से कुछ मांगता है तो वास्तव में धोखा खा रहा है। उस व्यक्ति की स्थिति दुर्योधन के समान है जो द्वारका में गया, कृष्ण सब कुछ देने के लिए तैयार थे। भगवान तो इतने उदार है कि वो अपने आप को देने के लिए तैयार है, लेकिन हम अपने जीवन में भगवान को कदापि नहीं चाहते। कितने व्यक्ति हैं, कौन चाहता है कि हाँ मेरे जीवन में कृष्ण चाहिए, हमें कृष्ण नहीं चाहिए, हमें बहुत सारी चीजें चाहिए और फिर समय मिला तो कौन चाहिए, कृष्ण चाहिए। यह हमारी दयनीय स्थिति है। हम तो दुर्योधन की तरह, दुर्योधन मतलब जो दुष्टता से दूसरों का धन हड़पने में लगा रहता था। हाँ जैसे एक तो उनके पिता का नाम क्या था, धृतराष्ट्र, धूर्तता से राष्ट्र हरण करता जो बाप है, वैसा ही क्या होगा, पुत्र ही होगा, दुर्योधन। हाँ तो उसी प्रकार से हम हैं दुर्योधन के भांति कि भगवान प्राप्त करने की अपॉर्चुनिटी हमें मिली, भक्तों का संग मिला, कृष्ण कथा आदि श्रवण करने का मौका मिला, हरे नाम का उच्चारण करने का मौका मिला, कृष्ण प्रसाद जीवा से आस्वादन करने का मौका मिला, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, कृष्ण को अपने जीवन में नहीं चाह रहे हैं। मतलब द्वारका में दुर्योधन जाकर भगवान को नहीं चाहता, वो कहता है कि भगवान हे कृष्णा आप तो नहीं चाहिए, आपकी नारायणी सेना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारी स्थिति है, हमें तो दुर्योधन अर्जुन से सीखना चाहिए। अर्जुन के जीवन में कितनी ही विपदा आ गई, कुछ भी हो गया पांडव उनके जीवन में, लेकिन उन्होंने किसको नहीं छोड़ा, किसको नहीं छोड़ा, हाँ कुछ भी हो जाए। तो उसी प्रकार से आप सबकी परीक्षा है। हाँ, ये प्रेरणा धाम का आखिरी लेक्चर है, प्रेरणा धाम का आखिरी प्रोग्राम है, और आपको भी अपॉर्चुनिटी है ये साबित करने का कि हमें हमारे जीवन में कौन चाहिए, कृष्ण चाहिए। चाहे वो जगह बदले या ना बदले, लेकिन मैं हर संडे कृष्ण कथा श्रवण करने के लिए, भक्तों का संग करने के लिए, हाँ जहां भी अगला स्थान होगा वहां पहुंच जाऊंगा या पहुंच जाऊंगी। हाँ, तो अर्जुन पांडवों के जीवन में इतनी विपदा आई, वनों में भ्रमण करना पड़ा, कितने राक्षसों से जीवित हानि हो रही थी, कितने संकटों का सामना आया, लेकिन उन्होंने एक चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और वो कौन थे, कृष्ण थे, जिसके कारण कृष्ण भी सदैव उनकी सेवा में, उनकी देखभाल करने में तत्पर रहे। तो उसी प्रकार से हैं, आप आज यहां हो, अगले संडे यहां नहीं हो, तो ये आपको आपकी एक प्रकार से कृष्ण परीक्षा लेंगे, और आपको साबित करना है कि चाहे ये प्रोग्राम जहां मर्जी हो, मैं अपने दो पावन से चार पहिए के गाड़ी में या जिस मर्जी गाड़ी में जैसे भी पैदल आकर कहां पहुंचूंगा, उस स्थान में पहुंचूंगा जहां ये जो कृष्ण कथा है कंटिन्यू हो रही है। तो इस प्रकार से व्यक्ति को इन महान आचार्यों के द्वारा, महान भक्तों के द्वारा समझना चाहिए कि मेरे जीवन में किस प्रकार की प्रार्थनाओं की आवश्यकता है, मुझे क्या चाहिए। क्योंकि जो बच्चा होता है उसे पता नहीं है कि उसके लिए क्या लाभदायक है, उसकी उसकी जानकारी किसे है, माता पिता को है। उसी प्रकार से हमें पता नहीं है, हम विष को अमृत समझकर विष का पान कर रहे हैं। तो इसलिए हमें इन महान भक्तों की सहायता की आवश्यकता है, उनकी शिक्षा की आवश्यकता है। इसलिए प्रभुपाद ने अपने ग्रंथ दिए हैं जिनको हम पढ़ते हैं और समझ पाते हैं। इस कारण से नरोत्तम दास ठाकुर ने उस लाइन में कहा, तांदेरा चरण सेवी भक्त सनेवास, जनमे जनमे है यही अभिलाष। मुझे तो उनकी सेवा और दूसरी चीज क्या चाहिए, भक्तों का संग। क्या चाहिए, भक्तों का संग चाहिए। क्योंकि मेरे जीवन में भक्तों का, भगवत भक्तों का संग नहीं होगा तो वास्तव में मेरा जीवन क्या है, एक मृत व्यक्ति के समान है। इसी कारण से शास्त्र कहते हैं, ये चीजें बहुत दुर्लभ है, मैं भूल गया, उनमें से एक है तुलसी की सेवा, बहुत दुर्लभ है, और एक है भगवान जो कृष्ण है हम उनकी सेवा, और एक है भगवान के महान भक्तों का संग लाभ होना। तो ऐसी चार पांच चीजें वो कहते हैं। तो ये जो भगवान के भक्तों का संग है वो अत्यंत दुर्लभ है, जिसकी कामना कौन करते हैं, देवतागण करते हैं। जब प्रचेताओं के लिए, हाँ जब शिवजी के द्वारा जो प्रचेता थे, राजकुमार थे इस पृथ्वी के, भागवतम में वर्णन आता है, उन्होंने शिवजी के द्वारा दी गई प्रार्थना का वर्णन किया। केरला में एक स्थान आता है गुरुवायूर, वहां वो सरोवर है जिसके अंदर रुद्र गीत या रुद्र प्रार्थनाओं का उच्चारण प्रचेताओं ने किया, और वो जैसे ही बाहर आए उन प्रार्थनाओं का उच्चारण करके, तो भगवान विष्णु साक्षात गरुड़ के ऊपर प्रकट हो गए, और भगवान ने कहा कि हे प्रचेताओं, आपने मेरे भक्त ने दी हुई प्रार्थनाओं को फॉलो किया है, जिसके कारण मैं अत्यधिक प्रसन्न हो गया हूं, मुझे आपने जीत लिया है, आप मांगो क्या चाहिए आपके जीवन में। हाँ, तो हम तो कई सारी चीजें भगवान से मांगेंगे। तो प्रचेतागण जो राजकुमार थे, प्रचेता हाँ कई सारे राजकुमार थे, उन्होंने कहा कि हे कृष्णा, इस संसार में जो मरने वाला व्यक्ति है उसके लिए सबसे बड़ा वर कुछ हो सकता है, सबसे बड़ा बुन या सबसे बड़ा लाभ कुछ है, तो वो क्या है? भगवत भक्ति संघर्ष, भगवान के भक्तों का संग लाभ होना। इससे बढ़कर इस संसार में बड़ा वर या लाभदायक वस्तु और कुछ नहीं है। भगवान के भक्तों के संग में सब कुछ छिपा हुआ है। इसी कारण से किसी वस्तु की कामना करनी है, रोज प्रभुपाद या कृष्ण को प्रार्थना करनी है, तो एक ही करनी है, हे कृष्णा, कुछ भी हो जाए मेरे जीवन में, लेकिन मेरे जीवन में क्या नहीं हो जाए, भगवान के भक्तों का संग मुझसे छूट नहीं जाना चाहिए। क्योंकि भगवान के भक्तों का संग हमारे जीवन से छूटता है तो उसका मतलब है कृष्ण हमारे जीवन से छूट रहे हैं। भगवान के भक्तों का संग करने की इच्छा नहीं हो रही है, उसका मतलब है हम कृष्ण अपने जीवन में नहीं चाहते, हम कृष्ण के अलावा अपने जीवन में कोई और वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि की कामना करते हैं। इस प्रकार से वास्तव में ये सर्वोत्कृष्ट देन है। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि ये जो मंदिर है, ये जो आंदोलन मैंने बनाया है, इसका एक में उद्देश्य यही है। इसी कारण से प्रभुपाद ने ये वर्ड रखा इस आंदोलन के नाम में, अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ। क्यों रखा है संघ? क्योंकि संघ कलयुग में है, संघ में जब आते हैं और भगवान का स्मरण आदि करते तो बहुत प्रभावशाली है। तो प्रभुपाद ने कहा मैंने ऐसे आंदोलन की स्थापना की है, ऐसे मंदिरों की स्थापना की है कि वहां सर्वसाधारण लोग चलते हुए आए और वहां के भक्तों का संग लाभ करके अपने जीवन में कृष्ण के स्मरण को क्या करे, बढ़ाए। तो अपने जीवन में हमने कुछ गेन किया है कुछ सालों में, तो चेक करना चाहिए कि क्या मुझे मेरे जीवन में कृष्ण का स्मरण बढ़ते जा रहा है। यदि कृष्ण का स्मरण बढ़ रहा है अपने कार्यों के द्वारा सब चीजों में, तो समझना चाहिए हाँ कि मैं उन्नति कर रहा हूं। प्रभुपाद ने तो दो चीजें कही चेक करने के लिए कि मैं भक्ति में बढ़ रहा हूं या नहीं। प्रभुपाद ने कहा किसी के पास जाकर पता करने की आवश्यकता नहीं है कि मैं भक्ति में कितने उन्नति कर चुका हूं। प्रभुपाद ने कहा केवल दो चीजों को चेक करो, कितना मेरे अंदर लस्ट कम हो गया है, हाँ जो काम है भोग करने की इच्छा लस्ट, और दूसरा ग्रेड कितना कम हो गया है। लोग ये दो चीजें जितनी मात्रा में आपके हृदय को छोड़ के भाग रही है तो उतनी मात्रा में हमें समझना चाहिए कि मैं आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर रहा हूं या आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर रहे हो। तो इस प्रकार से भगवान के भक्तों का संग प्रदान करने के लिए एकमेव श्रील प्रभुपाद ने इस आंदोलन की स्थापना की है, जिसके द्वारा क्या कि हम कृष्ण का स्मरण करना सीखते हैं। इसी कारण से प्रभुपाद ने इतनी सारी सुव्यवस्था की है, इसी कारण से प्रभुपाद ने ग्रंथ दिए, अर्च विग्रह दिया, प्रसादम दिया, हरिनाम दिया, चार नियमों का पालन आदि दिया। ये सब चीजें किस लिए? कि अधिक से अधिक हम कृष्ण का स्मरण कर पाए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। सारी सिद्धि उसी में छुपी हुई है। कितना अधिक हम भक्तों का एसोसिएशन करते हैं। एसोसिएशन का मतलब है भगवान के भक्तों से क्या करना, नित्य रूप से श्रवण करना कृष्ण के बारे में, अपने जीवन के बारे में, भक्ति में उन्नति के बारे में, भगवान और उनके महान भक्तों के बीच में दिव्य आदान प्रदान के बारे में निरंतर। जब ये जो वर्णन है हमारे कानों में प्रवेश करता है तो हम सो भी रहे हैं तो वो इको होता है। हाँ, जैसे कोई आपको गालियां देता है बहुत कर्कश, नींद आती है उस दिन, इतना हाईली इको होता है, पूरा गूंजता रहता है।
हाँ, बहुत परेशान होता है व्यक्ति। तो उसी प्रकार से कृष्ण का नाम, कृष्ण की कथा, कृष्ण का वर्णन कानों में जाना चाहिए। और हम कुछ जैसे कई कई भक्तों का ये भी अनुभव होगा, जैसे कल भी मुझे एक डिवोटी बता रहे थे, मैंने बोला अरे प्रभु आपको हमेशा फोन करता हूँ, आप फोन उठाते नहीं हो, और दूसरा मैसेज करो तो भी नहीं पढ़ते हो। तो कहते प्रभु जी मेरी एक समस्या है। मैंने कहा क्या समस्या है? मैं जब फोन को रिंग ऑन रखता हूँ और फोन बंद भी हो जाता है, स्विच ऑफ भी हो जाता है, मैं कुछ कर रहा हूं तो मेरे कान को रिंग की आवाज आती रहती है, और मैं सो भी रहा हूं तो भी वो रिंग की आवाज घूमती गूंजती रहती है। तो कहते वास्तव में वो रिंग साइलेंट होता है फोन, इसलिए मैंने क्या किया आजकल फोन को साइलेंट रखा है हमेशा के लिए। मतलब और वैसे भी हम सबके साथ हैं, एक के फोन की घंटी किसी कोने में बजे तो सबको लगेगा किसका फोन बज रहा है, मेरा ही बज रहा है। हाँ? तो ये हमारी सिचुएशन है। तो ये जो कृष्ण कथा है, कृष्ण नाम आदि है, ये इतना अधिक इन कानों से प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि परीक्षित महाराज कहते हैं भव औषधि स्तोत्र मनोभिरामा का उत्तम श्लोक गुणानुवादात। वो कहते कि ये उत्तम श्लोक है, ऐसे कृष्ण का गुणगान जो कानों के द्वारा जाना चाहिए, अधिक से अधिक जाना चाहिए। जैसे लोग हाँ खाने के बड़े वो रहते हैं, शौकीन होते हैं, मुझे पता नहीं कौन से कंट्री में लोग इतना खाते हैं, इतना खाते हैं, खाते ही पेट पूरा भर जाए तो फिर से उल्टी करते हैं ताकि क्या करें फिर से खाएं। हाँ, तो हमें कृष्ण कथा को इतना लालायित होना चाहिए, इतना लवली होना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा भगवान को परचेज करने का एक ही मूल्य है, तत्र लवले मूल्य में कलम जन्म कोटि सुकृतिर न लभ्यते। एक ही मूल्य देखकर आप कृष्ण को खरीद सकते हो, और वो क्या है कि आपके हृदय में कृष्ण को प्राप्त करने की कितनी लालसा है। वो कहते कि आपके भौतिक पुण्यों से या सुकृति आदि जो पूर्व जन्म की है उससे भी आप कृष्ण को नहीं खरीद सकते, लेकिन लवले चाहिए। फिर ये लवले रूपी धन कहां से आएगा? लवले रूपी धन हमें मिलता है भगवान के महान भक्तों के संग से, क्योंकि ऐसा लवल्य उनके हृदय में है। उनके हृदय में भगवान के नाम रूप गुण लीला का वर्णन करने के लिए, भगवान के नाम रूप गुण लीला का श्रवण और उनकी सेवा के लिए है। जब हम उनकी सेवा और उनका संग करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उसी प्रकार की लवल्य की भावना हमारे हृदय में आती है। हाँ, मतलब वो बीमारी, ऐसी बीमारी बहुत अच्छी है जो हमें चाहिए। हाँ, तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने कहा कि ये लवल्य केवल हमें भक्तों के संग से ही संभव है। इसी कारण से भक्तों का संग जैसा जो बड़े वस्तु इस संसार में नहीं है, जिसको वास्तव में देने के लिए चैतन्य महाप्रभु भी आए। चैतन्य महाप्रभु ने इस महान संघ का संघ अपना संघ प्रदान किया सारे संसार को। इतना ही नहीं, हम कितने सारे अलग अलग कथन शास्त्रों से सुनते हैं, मृगारि के बारे में सुनते हैं जिनको नारद का थोड़ा सा संघ मिला था, और वाल्मीकि के बारे में सुनते हैं जिनको किनका संघ मिला था, नारद मुनि का संघ मिला था। ध्रुव महाराज के बारे में सुनते हैं जिनको किनका संघ लाभ हुआ था, नारद मुनि का। और बल्कि कहां थे ध्रुव महाराज? ध्रुव महाराज तो निकल पड़े थे, मुझे बड़ा राज्य चाहिए, कोई मेरे सामने नहीं आना चाहिए। तो जब ये निकल पड़ा छोटा सा बालक तो नारद आते हैं और नारद उनको गाइड करते हैं, और नारद के आदेश का पालन करके वृंदावन में, मधुवन में, मथुरा के नजदीक ये ध्रुव महाराज यमुना के तट पर बालों से कृष्ण का अर्च विग्रह बनाते हैं, और वहां ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण करते हैं। कठोर तपस्या का पालन करके 6 महीने में किसको अपने सामने खड़ा करते हैं? कृष्ण को। 6 महीने छोटा सा बालक, लेकिन क्या है उनके अंदर? वो लवले है, और वो लवले उनको एक प्रकार से नारद मुनि से मिलता है। उसी प्रकार से प्रहलाद प्रहलाद तो माँ के गर्भ में थे, लेकिन नारद मुनि का संग उन्हें लाभ प्राप्त हुआ। तो भक्ति को कोई बाधा नहीं है, भक्ति इसलिए भक्ति स्वतंत्र है। नारद मुनि जब उनकी माता प्रहलाद की माता जो थी कयाधु, उनको सारे देवतागण मारने के लिए आ गए कि ये गर्भवती है और इनके गर्भ में कोई आसुर पैदा हो सकता है जो हमारे कष्ट का कारण है। तो नारद मुनि ने कहा नहीं, कयाधु के घर में एक महान रत्न है, तो अपने आश्रम में ले गए। कयाधु छोटी मोटी सेवाएं करते थे और नारद मुनि रोज नित्यम भागवत सेवया, नित्यम कृष्ण का गुणगान करते थे। और कयाधु वहां बैठकर सुनकर नियमित रूप से कृष्ण कथा सुना करते थे। आजकल की स्त्रियां किसके सामने बैठती है? टेलीविजन के सामने। लेकिन उस समय नारद मुनि से भागवत कथा सुनी जा रहे थे, और उतना ही नहीं, केवल कयाधु ही नहीं सुन रही थी, बल्कि कयाधु के घर में प्रहलाद थे, वो अंदर से हुंकार कर रहे थे कि हाँ मैं सुन रहा हूँ, हाँ बोलिए आगे बोलिए नारद, अंदर से ही इतनी लालसा। और बाहर आते ही उन्होंने चमत्कार कर दिया, उनके जैसा महान भक्त नहीं हुआ। और इतना निर्भय, अपने पिता श्री को सारा संसार भयभीत होता था, फिर भी प्रहलाद किसी से भयभीत नहीं थे, क्योंकि उन्होंने कृष्ण जिनका नाम अभय है, भगवान के जो चरण कमल है वो अभय प्रदान करने वाले हैं, उनकी उन्होंने शरण ग्रहण की थी। किस रूप में? उनके नाम के रूप में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम
राम राम हरे हरे। इस प्रकार से हमें सदैव किसी चीज की कामना करनी है, किसी चीज की भगवान से याचना करनी है, तो भगवान से यही याचना करनी है कि कृष्णा आपके महान हम शरणागत भक्तों का क्या हो, मुझे संग लाभ हो, भक्तों की संगति में मैं रहूं, क्योंकि भक्तों के संगति में हम भगवान को भूलना चाहे तो भी नहीं भूल सकते। भक्तिरूप ठाकुर ने तो हद कर दी भक्तों के संग की। भक्तिरूप ठाकुर अपने गीत में लिखते हैं कि हे कृष्णा, मुझे मेरे कर्मों के कारण अगले जीवन में कीड़े का भी जन्म लेना पड़े तो भी मैं तैयार हूं, मुझे कोई ब्रह्मा आदि का जन्म नहीं चाहिए, इंद्र का महान इंद्र जैसा जन्म नहीं चाहिए, मुझे तो एक कीड़े का भी जन्म मिले, लेकिन मिले तो आपके भक्त के घर में। कहां मिले? भक्त के घर में कीड़े का जन्म मिले, और घर में भी नहीं, उनकी जो किचन से नाला बहता है, नाली बहती है जल, उनका उच्चिष्ट आदि, वहां कीड़े का जन्म मिले, उनके घर से जो आपको अर्पित प्रसाद है उसका थोड़ा भी क्या वहां से बहेगा, प्रसाद बहेगा, उसको मैं ग्रहण करूंगा उनका उच्चिष्ट, उससे ही क्या होगा, मेरा लाभ होगा, उद्धार होगा। तो ये कामना है, ये तो बहुत बड़ी इच्छा है। लेकिन प्रभुपाद ने कहा थिंक बिग, केवल पुस्तक वितरण के समय नहीं, सब समय हमें क्या सोचना है, थिंक बिग। चैतन्य महाप्रभु ने इसलिए कहा मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकित्वय, कृष्णा मुझे आपकी आहेतु की भक्ति चाहिए, चाहे मुझे इस संसार में बारंबार जन्म क्यों ना लेना पड़े। तो इसलिए आयु बहुत कम है, कितने कम है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, बहुत कम दिन हमारे पास बचे हुए हैं। हाँ, यदि हम उसका लाभ नहीं उठाते, भक्तों का सहचर्य की कामना नहीं करते, तो हम वास्तव में एक मृत व्यक्ति के समान है। शास्त्र कहते हैं जो व्यक्ति भक्तों के संग के अलावा जीवित रहता है वो एक मुर्दे के समान है, एक शव के भांति है। तो यह हमारे ऊपर निर्भर है, क्योंकि भक्तों का संग हमारे जीवन में ऑक्सीजन का काम करता है, और फिर तब हम वास्तव में कृष्ण का स्मरण कर पाते हैं। भक्तों के संग में ही भगवत भक्ति हमारे लिए सुलभ होती है, जो बहुत दुर्लभ है वो क्या हो जाती है, सुलभ हो जाती है। इसलिए भक्ति के 9 6 लक्षण है जो भक्ति रसामृत सिंधु में, क्लेशाग्नि शुभदा मोक्षा
लघुकृत सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण आकर्षणीच, उसमें से एक क्या है कि दुर्लभा नहीं है बल्कि एक लक्षण है सुदुर्लभा है। वहां कहते हैं रेयर, रेयर से भी अधिक रेयर। तो वो भगवत भक्ति दुर्लभ भक्ति चैतन्य महाप्रभु श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमारे हाथ में है, वो हीरा भक्ति रूपी रत्न हमारे हाथ में है, और वो हमें हम फेंक भी सकते हैं या उसको छाती में लगा के रख सकते हैं, क्योंकि जो सबसे प्रिय वस्तु है वो काम रखते हैं, कहाँ रखते हैं, छाती में लगा के रखते हैं कि नहीं। जैसे बच्चा है उससे प्रेम करते हैं, उसको कहाँ पकड़ते हैं, छाती में या पाँव में पकड़ते हैं, आजकल तो उसमें रखते हैं, क्या है ट्रॉलीज आ गई है, बच्चा ट्रॉली ट्रॉली में रखो, घूमते रहो घुमाते रहो, और आजकल पीछे भी रखते हैं, हाँ पीछे कैरी करने वाला एक बैग भी है, बच्चों को डालते कहा, जैसे कुली होते हैं रेलवे में वो सारा सामान पीठ में उठाते हैं, वैसे बच्चों को पीछे डालते हैं, और माता अपने हाथ में मोबाइल है वो गैजेट्स लेके घूमती रहती है। हाँ तो कलयुग है, कौन सा युग है, हाँ तो वैसे ही, हाँ इसलिए कृष्ण कहते हैं मैं तो हृदय में निवास करता हूँ, प्रिय चीज को हम कहाँ स्थान देते हैं, हृदय में, तो इसलिए कृष्ण का निवास स्थल है हृदय, और उस हृदय को हमें तैयार करना होगा, और वो तैयार हो सकता है भक्तों की संगति में, हाँ और वो फिर कृष्ण हमारे लिए सुलभ हो सकते हैं। तो ऐसे कृष्ण हाँ बहुत दयालु हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और उनका एक भक्त वत्सल रूप कौन सा है, जगन्नाथ देव, कौन सा रूप है, वैसे तो आज मुझे जगन्नाथ के बारे में बताना था आप सबको, हाँ लेकिन मैं बता नहीं पाया, तो थोड़ा सा समय बचा है। भगवान जगन्नाथ की आज रथ यात्रा है, तो रथ यात्रा एक विशेष उत्सव है, मैं आज गले में भी सुबह लेक्चर दे रहा था रथ यात्रा के बारे में, तो जिसमें भगवान जगन्नाथ अपने मंदिर को छोड़कर बाहर निकलते हैं, तार सम्मति लिया भक्त सुख देते, अपने लक्ष्मी देवी का आज्ञा लेकर भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए निकलते हैं, और भगवान बहुत चिंतित रहते हैं, हाँ रथ यात्रा के ऊपर आते हैं तो उनकी आंखें ढूंढती रहती है, किसको ढूंढती है, किसको ढूंढती है, अपने भक्तों को ढूंढती है, भगवान आनंद अनुभव करते हैं भक्तों को देखने में, और भक्तगण आनंद की अनुभूति करते हैं अपने भक्तों को भगवान को देखने में। हाँ तो मैं अभी गाड़ी से आते आते सोच रहा था, इस संसार में लव एट फर्स्ट, क्या है वो, लव एट फर्स्ट साइट, हाँ तो पहले ही दृष्टि में हम किसी के प्रेम में पड़ जाते हैं, तो मैं सोच रहा था कि क्या उदाहरण है शास्त्रों में कि किसी भक्त ने पहली बार भगवान को देखा और भगवान के प्रेम में पड़ गए, तो मुझे एक उदाहरण आया जगन्नाथपुरी के एक भक्त का याद, तो उनका नाम था दासिया बावरी, क्या नाम था, वैसे तो हजारों उदाहरण है, हाँ कितने सारे उदाहरण है जिन्होंने केवल पहली बार भगवान को देखा, फिर उन्होंने अपने जीवन में किसी और से प्रेम नहीं किया, वास्तव में कृष्ण ही प्रेम करने के एकमात्र विषय है, क्योंकि इस संसार में बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हम प्रेम करने की वस्तुएं और व्यक्तियों को बदलते रहते हैं। अब सोचो आप अपने जीवन में अनुभव करो, जब से जन्म लिया है आपके जीवन में कितने लोग आ गए जिनसे आप प्रेम करते 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 बूढ़े हो गए, मृत्यु के समय तक पता नहीं चला कि मुझे किससे प्रेम करना चाहिए था। शास्त्र कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ लव कोई है तो वो कृष्ण है। तो एक डिवोटी थे जगन्नाथपुरी से 10-12 किलोमीटर एक गांव है बलग्राम या बालीग्राम, तो वहां एक सरल सा व्यक्ति निवास करता था जिनका नाम था दासिया बावरी, एक सर्वसाधारण पत्नी थी उनकी, और उनके पास कुछ धन आदि नहीं था, वो एक कपड़ा बुनते थे और एक कपड़ा बेचते थे, उसमें जो भी धन आ जाए उसमें ही उदर निर्वाह करते थे, लेकिन उन्होंने भगवान जगन्नाथ के बारे में सुना था लेकिन कभी उनके विग्रह आदि को ठीक से देखा नहीं था,
और उन्होंने सोचा कि भगवान तो रथ के ऊपर सवार होकर बाहर निकलते हैं, क्योंकि वो निम्न जाति के थे तो उनको जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं था। वहां आप जाओगे जगन्नाथपुरी में तो वहां लिखा हुआ है ओनली हिंदूज आर अलाउड। कौन अलाउड है वहां? हिंदूज। तो वहां इनको प्रवेश तो नहीं था, तो अपनी पत्नी का परमिशन लेकर अपने गांव से दिखा रहे बहुत लोग जा रहे हैं जगन्नाथपुरी रथ यात्रा में, भगवान तो बाहर आते हैं सबको दर्शन देने के लिए, आनंद प्रदान करने के लिए। तो ये गए, और जब गए तो भगवान वास्तव में अपने भ्राता बलराम सुभद्रा और उनके साथ बाहर आ रहे थे सुदर्शन के साथ। उन्होंने जगन्नाथ को देखते ही जगन्नाथ ने उनके हृदय में क्या कर लिया? स्थान ग्रहण कर लिया। और इनके मुख से भगवान के लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं निकल पड़ी। जब हम भगवान का दर्शन करते हैं तो भगवान की स्तुतियां करनी चाहिए, भगवान को प्रेयर्स, सबसे पहले तो उनका गुणगान हम करें, हाँ फिर उनसे प्रार्थना करें कुछ विशेष, हाँ और फिर हाँ इस प्रकार से वो जो दासिया बावरी हैं भगवान से प्रार्थना आदि कर रहे थे, और फिर भगवान रथ के ऊपर सवार हो गए और रथ खींचते खींचते गए, और रथ यात्रा के बाद ये वापस अपने गांव आए। जैसे गांव आए अभी उनका हृदय में कौन बैठ गए थे पूर्ण रूप से? जगन्नाथ देव। तो ये प्रेम का एक लक्षण है, जहां जहां नेत्र पड़े तहां तहां कृष्ण स्फुरे। जहां जहां आपके नेत्र पड़ेंगे वहां आपको कौन स्मरण होंगे? कृष्ण। प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं कि किसी माता का अपने बच्चे से बहुत प्रेम होता है, बच्चा दूर विदेश में कहां निवास कर भी रहा हो, घर में उसके जूते किसी कोने में नजर आ जाए तो बच्चे का स्मरण बहुत तीव्र हो जाता है, सब कुछ उसे स्मरण हो जाता है, बच्चे का नाम रूप गुण लीला जितनी भी है सब कुछ उसके हृदय पटल पर उमड़ता है। उसी प्रकार से भगवान का भक्तों से इतना अधिक प्रेम होता है, हाँ तो हर जगह कृष्ण को देखते हैं। अभी ये घर आए, घर आए तो पत्नी ने कुछ प्रसाद बनाया था। क्या प्रसाद बनाया था? बैठे हाथ धोकर प्रसाद स्वीकार करने के लिए पत्नी ने मिट्टी का पात्र रखा सामने, जिसमें हाँ जो पात्र रखा जिसमें शुभ्र चावल डाले और फिर शाक जो बनाया हुआ था वो डाल दिया। अब ये दासिया बावरी बैठ गए और अपने प्लेट को देख रहे थे कि आज क्या मेरे सामने परोसा गया है। तो देखते ही वो सर्वसाधारण प्लेट नहीं नजर आ रहे थे, वो राउंड शेप में थे। उनको क्या नजर आ रहा था? जगन्नाथ की आंख। क्या नजर आ रहे थे? क्योंकि जगन्नाथ की आंख, वो जो मिट्टी का पात्र था वो रेड कलर का था, हाँ लाल कलर का, और उसमें सफेद क्या थे? चावल थे, और उसके ऊपर बीच में काले शाक, जनरली ब्लैक सा होता है ना पकने के बाद, पहले तो हरा होता है और बीच में वो शाक डाले हुए थे। तो इसको देखकर उनको जगन्नाथ की आंख स्मरण आई, रथ यात्रा आदि, वो रोने लगे, आंखों से आंसू की धारा बहने लगी कि कैसे मैं ग्रहण कर सकता हूं। हाँ जगन्नाथ के आंख का स्मरण है आपको, कैसे दिखते हैं? किसको याद है जगन्नाथ कैसे दिखते हैं? स्मरण कर लीजिए, कभी कभी हमें अभ्यास करना चाहिए। जब हम विग्रह को देखते हैं बाहर आते हैं, इसी को मनन कहते हैं। जब आप मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो शुद्धि होने लगती है। हाँ जो भी हमने सुना है, देखा है, पढ़ा है, उसको हम अपने मानसिक पटल पर डालते रहे। जैसे गाय होती है, गाय को देखा है किसने? हाँ गाय जब घास खाती है, घास खाने के बाद आके बैठ जाती है तो वो चरवन करती है, क्या कहते हैं उसको? जुगाली खाती रहती, कुछ करती रहती, तो वो मनन है। उसी प्रकार से एक भक्त जो सुनता है, पढ़ता है, दर्शन करता है, उसको गाय की तरह क्या करते रहना चाहिए? हाँ स्मरण करना चाहिए, मननम करना चाहिए। तो इस प्रकार से इन्होंने जैसे उन आंखों को देखा, प्लेट को देखा, कौन स्मरण हुआ है? कृष्ण। इतना अधिक प्रेम, और जिनके कारण वो उस गांव में इतने फेमस हो गए। फिर भगवान ने जगन्नाथपुरी में ही उनसे कहा था, इतना उनके हृदय में प्रेम भाव जागृत हुआ कि भगवान ने कहा कि हे दासिया बावरे, तुम मुझे जो भी अर्पित करोगे ना, मैं उसको पर्सनली स्वीकार करूंगा। तो एक दिन वो अपना बुना हुआ कपड़ा बेचने के लिए बाहर निकले, क्योंकि उनका उधर निर्वाह का साधन वही था, थोड़ा सा बेचो एक क्लोथ और उसमें जितना धन आए एक दिन का गुजारा हो सकता है। तो ऐसे जा रहे थे तो एक किसी धनवान व्यक्ति के वहां गए, तो वहां देखा नारियल का सुंदर सा पेड़ है और बड़े बड़े नारियल लगे हुए हैं। तो वहां उन्होंने कहा मुझे एक नारियल चाहिए। उस व्यक्ति ने कहा ये कपड़ा मुझे दे दो, उसके बदले में नारियल दे सकता हूं। सोचो एक दिन उनका गुजारा उससे हो रहा था। तो उन्होंने कहा ले लो नारियल, दो नारियल। अभी कोई भक्त उनके वहां से जगन्नाथपुरी जा रहा था जगन्नाथ का दर्शन करने। तो उन्होंने सोचा कि भगवान के लिए मैं क्या भेजूंगा, नारियल भेजूंगा गिफ्ट, हाँ एक भेंट के रूप में। तो एक व्यक्ति जा रहा था तो उसके पास नारियल दिया, कहा कि आप नारियल लेके जाओ और भगवान को डायरेक्ट मत देना, भगवान जब हाथ आगे करेंगे हाँ तो उनके हाथ में नारियल देना, वैसे मत देना। अब ये जो नारियल लेके जाने वाला था वो भी अचंभित हुआ। उन्होंने कहा हजारों सालों से मंदिर जा रहे हैं, भगवान का हाथ आगे कभी नहीं देखा, हाथ ऐसे की ऐसे ही है, जो भी चीज है वो पुजारी का हाथ आगे आता है, किसका हाथ। और यहाँ ये कह रहा है बहादुर कि ये जगन्नाथ का हाथ आगे आना चाहिए, उनके हाथ में देना है। तो ये गया, इसने जो भी चीजें ले गया था जगन्नाथपुरी, आप जाते तो भगवान पूरे आपके बाहर का वॉल है इस कंपाउंड का, वहां खड़े हैं और आप यहाँ खड़े होते हो गरुड़ स्तंभ के पास दर्शन करते हो। उन्होंने कहा गरुड़ स्तंभ के पास खड़े होकर उनको दे दो। तो इस व्यक्ति ने अपने जो भी ऑफरिंग्स थी वो डाल दी और फिर भगवान, उन्होंने कहा भगवान स्वयं मांगेंगे। तो देखा कि भगवान का इतना लंबा हाथ, जगन्नाथ ने हाथ आगे किया और उनसे नारियल ले लिया। हाँ तो इस प्रकार से भगवान ऐसे भक्त की जो वास्तव में उनसे अत्यधिक प्रेम की भावना रखता है, उनकी सारी जो भेंटें हैं उनको स्वीकार करते हैं। क्योंकि कृष्ण एक शर्त रखते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मम भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरतम अश्नामी प्रयतात्मनः। अश्नामी मीन्स मैं खाता हूं, यदि उनमें क्या मिला हुआ है लव, हाँ भगवान भक्त के हृदय में जो प्रेम की भावना है वो यदि मिला है तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। विदुरानी के हाथ से क्या खाया उन्होंने, हाँ छिलके। सोचो ये कोई कथा ही नहीं है, हाँ लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, उतनी शरणागति चाहिए। हाँ और ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे मुझसे कुछ होगा ही नहीं, इससे भी हम नीचे चले जाते हैं, नहीं मुझे प्रयास करना है। हाँ महान भक्तों के आदर्श को सामने रखते हुए हमें क्या करना है, प्रयास और प्रार्थना भगवान के भक्ति में उन्नति के लिए, उनकी सेवा के लिए। जब हम निरंतर करते रहते हैं तो स्वाभाविक रूप से अपने आध्यात्मिक जीवन में हम क्या अनुभव करते हैं, परिवर्तन अनुभव करते हैं। हाँ तो आज के दिन भगवान जगन्नाथ रथ के ऊपर सवार होकर गुंडीचा मंदिर से वापस आते हैं। कौन से डेट को गए थे भगवान, 18 तारीख को गए थे जगन्नाथ मंदिर छोड़कर, और फिर आज के दिन वो वापस आते हैं वहां से गुंडीचा मंदिर से बैठकर। आज के दिन कहां पहुंचेंगे, जगन्नाथ मंदिर के गेट पर। लेकिन भगवान को एंट्री मंदिर में नहीं है, क्योंकि मंदिर का अधिकार किसके हाथ में है, लक्ष्मी देवी के। इसलिए मंदिर को कहा जाता है श्री मंदिर। हाँ तो वहां लक्ष्मी देवी का वर्चस्व है और भगवान जगन्नाथ ने कहा था कि थोड़ा सा सैर करने के लिए जा रहा हूं, अपने बलराम और सुभद्रा के साथ रथ के ऊपर जा रहा हूं, हाँ वापस आ जाऊंगा जल्दी ही। तो देखा अरे एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, मोबाइल भी नहीं ले गए। हाँ जैसे सोचो कोई पत्नी है, पति बोल के गया कि मैं जा रहा हूं, शाम को वापस आ जाऊंगा। और वो चला गया वो एक, अरे आया नहीं, फोन भी नहीं ले गया, कुछ भी नहीं, अकेला कैसे। तो ऐसे ही फिर दूसरे दिन भी नहीं आया, तीसरे दिन भी नहीं आया। पत्नी कैसी हो गई, दुर्गा का अवतार बिल्कुल क्रोध में। तो इसे महालक्ष्मी, इतना क्रोध आता है उन्हें कि वो निकल पड़ती है अपनी सेना को लेकर, कहते चार दिन हो गए अभी तक नहीं आए जगन्नाथ। तो लक्ष्मी देवी निकले, पालकी में बैठकर निकले उनकी सेना सब लेकर, और जहां भगवान पहुंचे थे, भगवान ने अपना कार तो बाहर पार्किंग कर लिया था, रथ कहां पार्किंग होता है सात दिन, गुंडीचा मंदिर के बाहर, लेकिन अंदर बड़े अमोश से रहते हैं सुभद्रा देवी बलराम उनके साथ गुंडीचा मंदिर में सात दिन, बड़ा आनंद अनुभव करते हैं। वो वैसे वृंदावन का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये गए, देखा ये तो महल में है राजशाही, अंदर बाहर तो सेवक लोग पहरे दे रहे हैं। फिर सोचा कि उनके सेवकों की पिटाई करते हैं। तो आज भी वहां जो सेवक होते हैं लक्ष्मी देवी और उनके पुजारीगण जाते हैं, और वहां जो जगन्नाथ के पुजारी होते हैं उनकी पिटाई करते हैं, रियली मारते हैं। एक 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 बार एक साल में गया था विशेष रूप से इस दृश्य को देखने, हेरा पंचमी कहते हैं उसे, और फिर रथ का थोड़ा सा भाग तोड़ के वापस ले आते हैं। तो ऐसी लक्ष्मी देवी बड़ी क्रोधित होती है, मारपीट करके सब कुछ करके, मतलब अभी तो आएगा वापस, जल्दी आएगा। फिर भी जगन्नाथ जी आते नहीं है, और तीन चार दिन लगाते हैं। फिर आज के दिन वो तंद्रा उनकी उतर जाती है, फिर कहते चलो वापस घर चलते हैं, जगन्नाथ टेम्पल चलते हैं। तो जगन्नाथ जी वापस आते हैं, आते तो देखते कि अभी प्रवेश द्वार, जो बड़ा प्रवेश द्वार है सिंह द्वार, वो तो बंद, उसके किवाड़ बंद हो गए हैं। तो क्योंकि किसने लॉक किया था अंदर से, लक्ष्मी ने कहा एक दिन बोल के गया, आया नहीं वापस, दरवाजा खुलेगा नहीं, बाहर सो, कहते ना फुटपाथ में सो जा। तो वैसे ये विशेष ये लीलाएं भक्तों को आनंद प्रदान करती है, लेकिन इनको समझने के लिए भी उन्नत अवस्था की आवश्यकता है, उन्नत आध्यात्मिक अनुभूति की आवश्यकता है। तो ऐसे जगन्नाथ ने देखा दरवाजे तो बंद है, मुझे प्रवेश, वो पढ़ा उन्होंने हिंदूज आर अलाउड, लेकिन आज भगवान जगन्नाथ भी अलाउड नहीं थे। तो फिर आज के दिन भी बंद रहता है, उसका गुस्सा कम नहीं होता। कल के दिन भी भगवान सोचते क्या करूं, अभी रथ के ऊपर कब तक खड़ा रहूं। तो कल भगवान को एक विशेष ड्रिंक पिलाया जाता है, इतना बड़ा मटका, भगवान इतने ऊंचे हैं, 7 फीट ऊंचे हैं जगन्नाथ, जितनी हाइट चैतन्य महाप्रभु के शास्त्र कहते हैं उतनी हाइट जगन्नाथ विग्रह की है, बड़े ऊंचे हैं। तो ऐसे जगन्नाथ को एक इतना ऊंचा मटका रखते हैं रथ के ऊपर, और उसमें विशेष पेय पिलाते हैं जल, उसको पीकर थोड़ा सा शांति अनुभव करते हैं। अभी सोचते कि दरवाजा कैसे खुलेगा, कैसे खुलेगा, थोड़ा सा खोला, बीच बीच में खोल के देखते हैं अभी क्या कर रहे हैं। और ये लिटरली ये सब होता है, ऐसे नहीं कि ये स्टोरी है, आज भी आप वहां उपस्थित होते हो तो ये सारी चीजें होती हैं। तो वहां भगवान लक्ष्मी देवी देखती है, फिर लक्ष्मी देवी थोड़ी सी मृदु हो जाती है और बलराम को और उनको अलाउ करती है कि नहीं सुभद्रा देवी, हाँ आप आ सकते हो, इनको दंड और मिलेगा। तो फिर कल के दिन ये तीनों रथ के ऊपर होते हैं, और कल के दिन विशेष एक वेश भगवान पहनते हैं जिसको कहते हैं सोना वेश, मीन्स इतना असंख्य गोल्ड धारण करते कृष्णा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, इतने बड़े बड़े सोने के हाथ, कई क्विंटल कई टन सोना, पांव बड़े बड़े, हाथ आभूषण बड़े बड़े, मुकुट आदि, और उनका ये विशेष दर्शन करने के लिए लाखों लाखों लोग आते हैं, देवतागण भी आते हैं भगवान को देखने के लिए। हाँ, तो इस प्रकार से फिर दूसरे दिन, हम तो कल के बाद का जो दिन है, तो उस दिन भगवान से कैसे मनाऊं इसे, तो भगवान एक ही उपाय करते हैं, क्योंकि शास्त्र कहते हैं किसी को कंट्रोल करना है तो उसकी किस चीज को कंट्रोल करो, टन को, किसको, जीवा को। प्रभुपाद ने कंट्रोल किया कैसे, क्लास होता था, प्रभुपाद कुकिंग करते रहते थे, बड़ा बड़ा जार गुलाब जामुन आदि से भर के रखते थे, बंगाली रसगुल्ला, और वो कहाँ रखते थे, इस गेट में, पीछे देखिए कोई जार नहीं है, लेकिन वहां एक जार भर के रसगुल्ला और गुलाब जामुन रखते थे और फिर प्रभुपाद प्रवचन देते रहते थे। और एक शर्त है, जिसको भी क्लास में से उठ के चले जाना है उसको जार का ढक्कन खोलना है, और जाते जाते जितने मर्जी गुलाब जामुन रसगुल्ले अपने मुंह में डालो, चले जाओ, लेकिन उससे बाहर कोई नहीं जा पाता था। चाहता था, खोलता था ढक्कन, मुंह में डाल के फिर से आके बैठता था। तो शास्त्र कहते हैं ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र, इन चारों को अलग अलग प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है। ब्राह्मण को कंट्रोल करते हो, उनकी टंग को कंट्रोल करो, उनका उनको स्वादिष्ट भोजन खिलाते रहो। ब्राह्मण आपको जैसे मंत्र चाहिए वैसे मंत्र क्या करेगा, उच्चारण करेगा। क्षत्रिय को बड़ा आदर देते रहो, वो आप कंट्रोल में हो जाएगा। तो ऐसे वैश्य आदि है, शूद्रास है, तो भगवान ने सोचा क्या करो क्या करो। तो भगवान ने सोचा जगन्नाथ जी, फिर गुलाब जामुन रसगुल्ले, रसगुल्ले जो बड़े बड़े रसगुल्ले हैं, उसके बड़े बड़े पात्र भर भर के भेजते हैं मंदिर के अंदर, और वो देखने मात्र से लक्ष्मी पिघलने लगती है। और उस दिन परसों के दिन, कल या परसों के दिन होगा, वह सारे पंडाल मटके भर भर के रसगुल्ले लाते हैं मंदिर के सामने और सबको बांटा जाता है। और क्योंकि लक्ष्मी को विशेष रूप से जगन्नाथ भेजते हैं, फिर लक्ष्मी एक दरवाजा नहीं सारे चारों द्वार खोलती है, और फिर कौन प्रवेश करते हैं, जगन्नाथ देव। तो ऐसे अद्भुत लीलाएं हैं, यही भगवान की विशेषता है। भगवान चिंतित रहते हैं सारे जीवन के बारे में, और वास्तव में हमारा सुख छुपा हुआ है भगवान के सुख में। जितना अधिक हम भगवान को सुख देने का प्रयास करेंगे, उतना ही अधिक हम सुख की अनुभूति अपने जीवन में करेंगे। और भगवान को हम सुख अकेले नहीं दे सकते, ऐसे दे सकते हैं भगवान के भक्तों के संग में आकर। और संग में आकर क्या करना चाहिए, नाचो गाओ भक्त संगे, करो संकीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के रिटर्न रथ यात्रा महामहोत्सव के श्री प्रभुपाद के।